Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2342-1050 and 2331-0481. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद वैभव. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का. और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. जैसे कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नम्बर्स पर कॉल कर सकते हैं. नम्बर्स हैं 2342-1050 और 2331-0481. मैं नंबर्स फिर से रिपीट कर देता हूं. 2342-1050 और 2331-0481. दिल्ली से बाहर के श्रोता हमें कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 डायल करना ना भूलें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद आपका.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
एब्सोल्युटली स्पर्श. फर्स्ट द हेडलाइंस. फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 11,000 करोड़ रुपीज इनटू द इंडियन कैपिटल मार्केट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. ग्लोबल डोमेस्टिक एंड मैक्रो डेटा टू ड्राइव मार्केट्स नेक्स्ट वीक. एंड ग्लोबल गोल्ड प्राइसेज राइज 0.5% दिस वीक.
सितंबर महीने के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में किया लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश. वैश्विक मैक्रो और घरेलू आंकड़े अगले हफ्ते कर सकते हैं बाजार का रुख तय. और वैश्विक सोने की कीमतें इस सप्ताह 0.5% बढ़ी. और सबसे पहले खबर नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर. सितंबर महीने के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इक्विटी बाजार में 10,978 करोड़ रुपए और ऋण बाजारों में 3,367 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे इस महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 11,345 करोड़ रुपए हो गया. ये निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया है. विदेशी निवेशकों ने अगस्त के महीने में इक्विटी में 7,322 करोड़ रुपए, जुलाई में 32,359 करोड़ रुपए और जून में 26,558 करोड़ रुपए का निवेश किया था. साथ ही भारतीय ऋण बाजारों में अगस्त में 17,953 करोड़ रुपए, जुलाई में 22,355 करोड़ रुपए और जून में 14,947 करोड़ रुपए का निवेश किया गया. इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 1,60,000 करोड़ रुपए हो गया है. वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई द्वारा इक्विटी में 53,859 करोड़ और डेट में 1,09,274 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है. इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से राकेश जुड़ चुके हैं. राकेश जी, स्वागत है आपका शो में. प्लीज सवाल पूछिए अपना.
नमस्कार.
नमस्कार जी. सवाल पूछना.
आकाशवाणी की टीम, पूरी टीम को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
जी आपको भी.
पड़को जी को भी. सर मेरा एक सवाल है. मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे मेरे पास कुछ अमाउंट अभी बैंक में मेरे पास रखा हुआ है एफडी के थ्रू, तो मुझे म्यूचुअल फंड में जाने का कुछ रास्ता बताएंगे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है
जी.
इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रांच वाले बैंक में भी कुछ इनकी जानकारी नहीं दे पाते ठीक से. ऐसा कोई एक्सपर्ट बताए कहाँ हम कॉन्टेक्ट करें, कहाँ जाए
म्यूचुअल फंड में निवेश करने का. एक तो तरीका है कि आप कहाँ जाए, क्या आप सीधे तौर पे कर सकते हैं, क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या आपका बैंक आपकी मदद करेगा, یا کوئی میوچل فنڈ ایجنٹ ہے جو آپ کے مدد کر یہ سارے وکلپ ہیں, اور دوسرا ہے کہ کہاں لگائیں, اور یہ کافی حد تک یہ آپ کے لیے کافی یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے, آپ کے آپ کی جو نجی استھتی ہے اس پہ یہ پوری طرح سے نربھر کرے گا کہ آپ جو سینئر سٹیزن ہیں یہ جو پیسہ آپ کو لگانا ہے اس سے کیا آپ کو انکم کی امید ہے, کیا یہ پیسہ آپ کا ایکسٹرا پیسہ ہے جس کو آپ کیول چاہتے ہیں کہ انویسٹ ہو جائے اچھا ریٹرن ملے, لیکن اس پیسے کی آپ کو فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے, کیا دو چار سال تک ضرورت نہیں پڑے گی, اس بات پہ نربھر کرے گا. پہلا بھاگ آپ کی طرف سیکھا کہ نویش کیسے کیا جائے. نویش کرنے کے آپ کے پاس تین چار وکلپ ہیں. ایک تو کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں کوئی میوچل فنڈ ایجنٹ کو ڈھونڈیں, یہ لوگ میوچل فنڈ کی دنیا قریب قریب 40-50 طریقے کے میوچل فنڈ ہیں, اس میں سے کون سا اپیوکت آپ کی ضرورت کے حساب سے یہ اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. دوسرا اگر کوئی آپ کو ایڈوائزر ملتا ہے یا میوچل فنڈ ایجنٹ تو یہ لوگ ہیں. دوسرا آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بینک تو ادھکتر بینک بھی آج کے دن میوچل فنڈ بیچتے ہیں. اور تیسرا ذریعہ اگر یہ دونوں آپ کو سیٹسفیکٹری لوگ نہیں ملے, اگر آپ کو بات چیت سے لگتا ہے کہ بھروسہ نہیں بنتا ہے, اگر یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ بیسک جانکاری نہیں رکھتے ہیں آپ کی ضرورت کی, تو تیسرا وکلپ ہے کہ تھوڑا بہت مچ کر کے اور ایک سمپلیفائڈ انویسٹمنٹ پلان آپ خود انویسٹ کریں, لیکن وہ انویسٹ کرنا ایک سینئر سٹیزن کے لیے جو کہ ڈیجیٹلی شادی نہیں ہو تھوڑا شاید مشکل ہوگا. تو یہ تین وکلپ ہیں جس کا کہ جو یہ راستہ آپ تیار کر سکتے ہیں. حالانکہ جو تیسرا والا راستہ ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں کافی آسان ہوا ہے. اگر آپ کے پاس اگر آن لائن بینک اکاؤنٹ ہے, اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اور پین کارڈ, تو آج کے دن پوری طرح سے آن لائن یہ سارا نویش کرنا کافی آسان ہے, اور بنا کہیں گئے ہوئے اگر آپ کے پاس یہ آدھار پاس یہ نردھارت ہو جائے کہ آپ کو کہاں پیسہ رکھنا ہے, تو یہ سب چیز سب کچھ آپ کے سیل فون سے کیا ایک اسمارٹ فون سے کیا جا سکتا ہے. دوسرا کہ کہاں آپ کو پیسہ لگانا ہے یہ پوری طرح نربھر کرتا ہے کہ آپ کسی آپ نے پیسے کبھی نہیں لگایا ہے, کبھی نہیں نویش کیا ہے, تو آپ کو کبھی بھی اور اکویٹی پوری طرح سے اکویٹی فنڈ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بڑی رقم ہے تو کبھی بھی ایک ساتھ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس آپ کے پاس وکلپ رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے آمدنی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کسی ڈیٹ فنڈ میں پیسہ لگانا چاہیے, یہاں پہ آپ ایک ساتھ پیسہ لگا سکتے ہیں. اگر اس پیسے سے آپ کو آمدنی کی ضرورت نہیں ہے, یہ لمبے سمے میں کیول بڑھوتی کے لیے پیسہ لگانا ہے, تو آپ کو کسی اگریسو ہائبرڈ فنڈ, یہ ایسے فنڈ ہے جس میں 60-70% پیسہ آپ کا اکویٹی میں رہتا ہے, 20-30% آپ ڈیٹ میں رہتا ہے. جب بازار میں گراوٹ آتی ہے تو آپ یہ اس طرح سے بہت رفتار سے گرتا نہیں ہے, جو کہ ایک شروعاتی نویشک کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کا بازار میں وشواس بن پائے, کیونکہ یہ جو اتار چڑھا کا دور ہے اکویٹی بازار کا یہ ہمیشہ جاری رہے گا, ہمیشہ رہا ہے اور بھوشیہ میں بھی ایسا ہی رہے گا. اور اس سے بچنے کا یا اس سے عادی ہونے کا آپ کے پاس یہی طریقہ ہے کہ کوئی تھوڑا اسٹیبل ویکل آپ لے پائیں جس میں کہ آپ کو اتنی نراشا نہیں ہو کہ آپ بازار سے اپنا سارا پیسہ نکال کے بھاگ جائیں. اور یہ کرنے کے لیے اور اگر آپ یہ کر پاتے ہیں اور تو ایک دو بار آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ خود یہ کر پائیں, کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس میں اور کسی ڈائریکٹ پلان میں انویسٹ کیجیے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک شروعاتی نویشک کے لیے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید یہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ آپ اسی شروعات کر, تو کسی میوچل فنڈ کو ڈھونڈیے, کسی میوچل فنڈ ایجنٹ کو ڈھونڈیے. میوچل فنڈ ایجنٹ تک پہنچنے کا ایک آپ کے پاس آسان ذریعہ ہے, میوچل فنڈ ایسوسیشن ہے ایم سی, ان کے ویب سائٹ پہ اگر آپ اپنے جہاں آپ رہتے ہیں آپ اگر پن کوڈ آپ اپنے ڈالیں تو آپ کے اڑوس پڑوس میں کون میوچل فنڈ ایجنٹ ہے اس کا آپ کے پاس کچھ وکلپ آ جائیں گے, کچھ لوگوں کا پتہ آ جائے گا جو آپ کے علاقے سے ہیں, ان لوگوں سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے میوچل فنڈ میں نویش کرنے میں شروعات کر.
And then, sir, we have our next caller from Kolkata, Animesh. Animesh ji, swagat hai aapka show mein. Please, apna sawal poochiye.
Good evening to you all.
Good evening.
Namaskar.
Namaskar.
Good evening, sir. Can a senior citizen invest with more than one mutual fund or one will have to invest with one mutual fund only? Thank you, sir.
Senior citizen, any investor can invest in as many mutual funds as you want to. But, you know, There is absolutely no embargo, no restriction on the number of funds you can invest, the type of fund that you can invest. There is no restriction. And all that you should worry about is that you invest in a good fund, the kind of fund which is, you know, right for you. Because there could be a great equity fund, but it may be inappropriate for a person for a certain need. There could be a great debt fund, but it may not be it may be completely inappropriate or unsuited for a person who is looking at, you know, long-term capital appreciation. So decide on your goals, decide on your time frame, choose the right fund, and have as many as you want to. And I think it is important to have more than one fund, because if you have a sizable money to be invested for a certain goal, there are generally, you know, more than one option or fewer options. You should invest in one or two funds just for sake of simplicity of, or if you have small amounts, you should not increase complexity of by investing in a large number of funds. But that's about it. Generally, to diversify your risk, one should be spreading over more than one fund, at least 3-4 funds if you have a sizable money to be invested, because, you know, even fund manager's style can be cyclical, and that way you will be from that.
जी और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं एसपीएस जैन. एसपी साहब सवाल पूछे अपना प्लीज.
हाँ नमस्कार जी, धीरेन जी को भी नमस्कार.
नमस्कार.
काफी दिनों बाद आए हैं, लास्ट वीक में आए थे, मैं काफी मुश्किल हुई मुझे मिलने के लिए. तो मैं एक तो मैंने कहना है कि उनकी एक किताब है बोरिंग वे टू गेट रिच, इसका टाइटल तो उल्टा होना चाहिए इंटरेस्टिंग वे टू गेट रिच. तो धीरेन जी से मैं इसके बारे में पूरी पढ़ ली है कि आप आई एम ए सीनियर सिटीजन, आपने कहा कि इक्विटी में बने रहिए आप, जबकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एज यू गेट ओल्डर आप डेट फंड में शिफ्ट करिएगा. तो इसका मुझे थोड़ा और समझाइएगा.
जी हाँ, मुझे लगता है कि वो समय बदल गया है. जिस समय लोग फिक्स्ड इनकम में लगाते थे, रिटायरमेंट के बाद भी आपका पैसा लगा रहता था और लोगों को लगता था कि आप जैसे रिटायर करते हैं आपका आपके रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है. और मुझे लगता है आज के दिन आपका पैसा इक्विटी में लगे रहना अनिवार्य है. अगर आपके लिए वो पैसा उस पैसे से मिलने वाला वो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और मैं ऑल इंडिया रेडियो पर सालों से एक ही बात बल्कि दोहराता रहता हूँ कि, और ये मैं केवल उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, ये केवल इस रकम पे ना जाए. अगर मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपए मिलता है और उनकी आमदनी की जरूरत अगर 50,000 रुपए महीने है, और अगर आप 1 करोड़ रुपए फिक्स इनकम में लगा देते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस के MIP में, और बाकी पैसा अगर आप RBI के बॉन्ड में लगा देते हैं, यहां से अगर आपको 7-8% रिटर्न भी मिल जाता है एवरेज करके, तो उससे मिलने वाला जो रिटर्न है, अधिकतर रिटर्न अगर आप 50,000 रुपए के हिसाब से अगर आप 6% का सालाना रिटर्न जो है अगर आप वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास जो बची हुई पूंजी होगी कंज्यूम करने के बाद अगर आपको 8% रिटर्न मिलता है, जो कि आज फिक्स इनकम में 8% रिटर्न मिलना बड़ा मुश्किल है टैक्स देने के बाद, तो ये पैसा आपकी जो पूंजी है वो रफ्तार से बढ़ रही है. अगर आपको अपनी पूंजी को बढ़ाना और आप अगर इनकम भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपका पैसा किस तरह से कम महंगाई को बीट कर पाएगा. अगर आपकी पूंजी महंगाई की दर से नहीं बढ़ती है तो आपका पैसा कम हो रहा है. आपको भले ही लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा असल में नहीं बढ़ रहा है, आपका पैसा कम हो रहा है. और इसलिए मेरी सलाह है कि हरेक को लेकिन इक्विटी में बने रहने का और इक्विटी में लगाने का, उसके लिए उसमें लोगों को डर लगता है, और खासकर रिटायरमेंट में जब आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी बदल जाती है, जब नियमित आमदनी आपकी बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोगों का अगर रिटायरमेंट से पहले थोड़ा सा अगर परिचय हो जाए इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी बहुत ही खतरनाक है अगर आप काफी कम समय के लिए निवेश करते हैं, लेकिन जैसे आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और एक आपके निवेश आपकी बचत का एक अच्छा खासा भाग काफी सालों के लिए लग रहता है, और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को इक्विटी से परिचय करना चाहिए, और उससे एक्लिमेटाइज होने के बाद आपको उसमें बने रहने का एक्सपीरियंस तभी हो सकता है जब आप 2-4 उतार चढ़ाव के बावजूद आपको लगेगा कि ये कितना फायदेमंद है. और मैं तो कह रहा हूं कि ये आपके लिए फायदेमंद ही नहीं है, ये आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके पास कम पैसा है और आप सारा पैसा अगर निश्चित आमदनी वाले फिक्स डिपॉजिट में, डेट फंड में या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा स्थिर हो जाएगा. आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं पाएगा। तो भविष्य में अगर आपको ज्यादा आमदनी की जरूरत होगी तो पैसे की कमी हो जाएगी।
जी, और अब रुख करते हैं राजस्थान का। उदयपुर से दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपनी सवाल पूछे अपना।
गुड इवनिंग, मैं दीपेश बोल रहा हूँ उदयपुर से।
जी,
मेरा सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और इन फील्ड पर ज्यादा है, तो हमें सेक्टोरल फंड्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एक यंग इन्वेस्टर हूं, तो मैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं और मैं हर महीने 5 से 7 हजार रुपये तक इन्वेस्ट कर सकता हूं। यदि नहीं तो फिर किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
मुझे लगता है कि आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह का जब बदलाव आता है हमारे किसी बड़े कंजम्पशन पैटर्न या किसी बड़े एनर्जी का जो बड़ा हम शिफ्ट देखने वाले हैं या जिसकी शुरुआत हो गई है, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन हो, तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आता है। तो इसका फायदा किस कंपनी को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सेक्टर फंड का एक तो यहाँ पे बड़ा फायदा भी होता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि पता नहीं कब ये काम करना शुरू करेगा। और दूसरा, ये बहुत ही साइक्लिकल होते हैं, भारी उतार चढ़ाव देख जाएगा यहाँ पे, और देखना होगा कि पुरानी कंपनियां यहाँ पे बड़ी हो पाती हैं या नई तरीके की कंपनियां आती हैं, पुरानी कंपनी बड़ी समस्या में आ जाएगी, कब ये अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि शुरुआत में इसमें बहुत पूंजी लगाने की जरूरत होगी और भविष्य में ये अच्छा करेगी, शायद बहुत सारे बिजनेस मॉडल भी डिस्टरप्ट होंगे इसकी वजह से। तो इन चीजों का आकलन कर पाना, यहाँ पे बड़ी अनिश्चितता होती है और इस वजह से यहाँ पे भारी उतार चढ़ाव भी देखा जाता है, बड़ा नुकसान भी होता है। जब भी कोई नया सेक्टर अगर क्रिएट होता है तो बहुत सारी कंपनियां काफी हिल भी जाती है। तो इसलिए मेरी आमतौर पर एक नए शुरुआती निवेशक को सलाह होती है कि आप अपना पैसा ऐसे लगाइए कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहे, और वो फंड मैनेजर इस तरह के मौके का फायदा उठा पाएगा, एक अगर आप एक एक्सपर्ट में लगाते हैं जो हर जगह लगा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के सेक्टर के बारे में आप बहुत आश्वस्त हैं कि ये अच्छा करेगा और इस तरह से कई सारे सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड उपलब्ध हैं जहां पे आपका लगाया हुआ पैसा रिन्यूएबल में लगेगा और बदलती हुई एनर्जी कंफिग्रेशन के आधार से कंपनी पे लगेगा, तो वहां पे आपका 5-10% पैसा लगा रहेगा। सारा पैसा इस तरह के फंड में नहीं लगाना चाहिए, इसके साइक्लिकलिटी की वजह से और अपने शिक्षा की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से।
Dhirendra sir, we had received calls from senior citizens about where they should be investing their corpus money into. Then we also got a call from a young investor talking about sectoral themes. I also wish to ask about young investors, that let's say there is a young investor who has a time horizon of 25, 30 or 35 years, and there can be a possibility of an SIP, investment every month. Which one would you suggest to such an investor, whether it would be a retirement aggressive fund or a hybrid aggressive fund, and which ones amongst these specifically would you prefer?
No, I would say that, you know, any young investor, he should start doing an SIP and without waiting for an expert to advise him, because I think time is crucial and I think there is a great learning. Whether you do it with 500 rupees, whether you do it with 5,000 rupees, it doesn't matter. I think savings is a habit, and putting your savings to work through an investment is quite a magical experience the moment you are able to do it for 1 year or 2 years. Because then you are, you know, there is absolutely no substitute for, getting a first-hand experience of, you know, putting your 500 rupees and that 6,000 rupees. That itself is magical in the first place. It is almost like putting 500 rupees in a piggy bank for 1 year. And when you see that 6,000 rupees has become 7,000, 8,000 rupees, and for a person who is struggling to save 500 rupees, that is quite a magical, the whole confidence that you derive, the growth, as well as the application process.
Gee.
So whether you do it with the SIP, if you can't look for a mutual fund, go to the nearest bank, do your recurring deposit. If you are living in a remote village, go to your post office and do your recurring deposit. I think the savings and investment habit is crucial in the early stages. Then come, you know, the waiting for the best mutual fund. It is futile exercise to wait for the best advice or choose the best fund. And I think it is very difficult to find the best fund, because you only get to know with hindsight. Once you have invested for 3-4 years, 5 years, then you look back that which is a great fund. I think it will be whether you invest in a sector fund, whether you invest in a small cap fund or an index fund, get started. I think that's crucial.
जी, और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं. जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मौके मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना.
हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा जयंत सर जी, आप बताते हैं कि बिल्कुल जो नया NFO आता है पुराने चीज को ढोल बाजे के साथ फिर से लाया जाता है. बिल्कुल सही बात है. तो आप बताएं कि जैसे ये जो भी मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 में 50 मोमेंटम, तो क्या निफ्टी 50 की तरह है क्या ये? और पहला ये तो मेरा प्रश्न हो गया. दूसरा है कि कोई ऐसा सेक्टर बच रहा है क्या जिसपे म्यूचुअल फंड का ध्यान न जा रहा हो? आपके थ्रू मालूम पड़ जाए कि कोई ऐसा सेक्टर छूट रहा हो लाने के लिए.
जी हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे सेक्टर की होने वाली है. लेकिन ये जो निफ्टी 50 मोमेंटम इंडेक्स फंड आ रहा है, ये एक अलग तरीके का इंडेक्स है. निफ्टी में जो 500 बड़ी कंपनी है उनमें से 50 ऐसी कंपनियों का जिनको कि हर 3 महीने पे रिवाइव किया जाता है, ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें कि खासा मोमेंटम है. और इस इंडेक्स का ट्रैक ऐसा है कि ये निफ्टी 500 की तुलना में 10-12% पिछले 10 साल में ज्यादा रिटर्न दे पाया है. लेकिन मोमेंटम का एक नुकसान ये है कि पॉजिटिव मोमेंटम तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब बाजार बढ़ रहा हो तो आपका लगाया हुआ पैसा ज्यादा रफ्तार से बढ़े. लेकिन कई बार इसका जो दूसरा साइड है जो कि बहुत सारे निवेशकों को पिछले 5-7 साल से उससे परिचय नहीं हुआ है या उसका हाथ नहीं हुआ है या उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो ये है कि जब ये टाइड उल्टा होगा, जब बाजार में बढ़त का दौर नहीं रहेगा, कुछ लंबे समय तक बाजार में गिरावट का दौर रहेगा, तब ये मोमेंटम काफी भारी पड़ गया. तो उसके लिए लोगों से तैयार रहना चाहिए. फिलहाल तो मुझे लगता है कि बस अच्छा है, डाइवर्सिफाइड वेक्ट होगा. शुरुआत में ही ये 50 स्टॉक में हमेशा, और ये यहाँ पे डिसिप्लिन फ्रेमवर्क है. यहाँ पे आपको पता होगा कि कितना होने वाला है और क्या कभी नहीं होगा.
एब्सोल्युटली सर. सो वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम लुधियाना. वी हैव राकेश जी. वेलकम टू द शो राकेश जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
जी नमस्कार.
जी नमस्कार.
सर मैं राकेश लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास कुछ अबाउट 3 लाख बैंक डिपॉजिट है FD में, तो जिसमें मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. तो अगर मेरा 1 साल का टारगेट है कि 1 ईयर में मुझे अगर 7% से अगर ज्यादा मुझे रिटर्न लेनी हो, तो क्या मुझे क्या प्लान करना चाहिए? कि अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेनी हो तो उसमें कौन सी चूज करने चाहिए या क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि शॉर्ट ही हो कि 7% से ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट?
जी
थैंक यू.
ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये आप जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे हैं, आपके पास पैसा एक तरह से इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा हो चुका है. SIP उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बाजार में हर महीने उस पैसे को लगा के नहीं देते हैं. और ये SIP है, और इसका फायदा ये होता है कि इक्विटी बाजार में भारी उतार चढ़ाव होता है, लगातार धीरे धीरे पैसा लगाने से आप इस उतार चढ़ाव का फायदा ले पाते हैं, और आपका बाजार में भरोसा बनाने में भी ये बड़ा मददगार साबित होता है. आप जैसे व्यक्ति के लिए जिसका पैसा 3 लाख रुपया बैंक डिपॉजिट में है और आप पैसा लगाना चाहते हैं और आपकी उम्मीद है कि बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए, और आप जैसे व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि SIP नहीं, SIP आप अपने नियमित आमदनी से जो बचाएंगे उसके लिए जरूर कीजिए. किसी अच्छे इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए, उसमें लगाइए. आप जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्मीद है कि डिपॉजिट थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए, मुझे लगता है कि बेहतर रिटर्न की उम्मीद करनी भी चाहिए. तो आप जैसे आपको एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कीजिए. एक फंड में अपना पैसा डिपॉजिट की तरह लगा दीजिए. वहां मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन फंड में 10-15% का पैसा 10-15% आपका इक्विटी में लगता है, 80-85% पैसा आपका डेट में, अच्छी कंपनियों के अच्छे बैंक के डेट में है. तो समझिए कि आपका 85% पैसा आपका डिपॉजिट करके निवेश में है जो, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में आता है, और बाकी जो पैसा है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको महंगाई से जूझने में या डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में बड़ी सुविधा होगी। एसआईपी करना नहीं है, एक साथ भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईपी करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप एक ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके चढ़े हुए बाजार में, बाजार के शिखर पे आप एक साथ न लगाए, क्योंकि वहां पे जब बाजार में गिरावट होती है तो आप हतोत्साहित होकर बाजार से आप अपना पैसा निकाल लेते हैं और ये नुकसान
जी। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं जगमाल। जगमाल जी स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछे अपना, थोड़ा शॉर्ट में पूछिएगा।
हाँ जी, पूरी टीम को नमस्कार।
जगमाल जी अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो सेट प्लीज बंद कर दीजिएगा, ये आवाज गूंजेगी। धन्यवाद।
हाँ जी, अच्छा सर, मैंने 2013 में, मार्च 2013 में ELSS में 70,000 रुपए लगाए थे
जी,
वो बढ़ के अभी 7.5 गुना मतलब 70,000 के 5,30,000 हो गए हैं
जी।
तो अब उनको मुझे मतलब पेशेंस की वजह से अब मुझे उसी में लगे रहने देना चाहिए, जरूरत नहीं है पैसे की, या निकाल के दूसरे फंड में डालूं। दूसरा सवाल ये है कि जो नैसडेक 100 है उसका अभी इंडेक्सेशन का क्या स्टेटस है लेटेस्ट, जो 2000
आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे को लगे रहने दीजिए और आपको आपको प्रदर्शन से अंदाजा हो ही गया होगा कि आपको किस तरह का रिटर्न दे सकता है। इस साल के बजट में विदेशी बाजार में लगे हुए पैसे का इंडेक्सेशन बहुत ही सामान्य होता है, दो साल के रिटर्न को भारतीय बाजार में लगा हुआ पैसा जो दो साल के रिटर्न पे जो आपको का ट्रीटमेंट होता है, और भारतीय बाजार में लगे हुए इक्विटी फंड में एक साल में जो रिटर्न का ट्रीटमेंट होता है वो विदेशी बाजार में लगे हुए पैसे का दो साल की अवधि में जो ट्रीटमेंट होगा वो बराबर है
जी। And some more stories. Investors will closely monitor domestic and global macroeconomic data, including inflation in India and the US, foreign fund inflows, crude oil prices and other global cues next week. Major announcements next week include the industrial production figures for July and the inflation data for August, both scheduled to be released on Thursday. Investors will also keep an eye on crude oil prices. Notably, crude oil prices have witnessed a major correction in the last few days, with the Brent coming in close to $73 per barrel. And gold prices, the global levels, rose 0.5% this week. Gold price ended the week at $2,516 per ounce on Friday, retreating from near record levels reached earlier in the session after mixed U.S. jobs data cast doubts on the scale of interest rate cut from the Federal Reserve later this month. The precious metal has climbed 22% in 2024. Bullion typically performs better in a low interest rate environment and is viewed as a safe asset during periods of uncertainty. Lower interest rates reduce the opportunity cost of holding the zero yield bullion.
जी, और हम धीरेन्द्र जी का भी धन्यवाद करते हैं कि मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और सभी की आर्थिक जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए। और श्रोताओं, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। स्पर्श और वैभव को दीजिए इजाजत, और मार्केट मंत्र की टीम कल शाम 6:30 पर फिर होगी आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in nearly 11,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first week of September. Global domestic and macro data to drive markets next week. And global gold prices rise 0.5% this week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar.
Market Mantra.